वाणी में कहा गया है, सब जग रूप ब्रह्म का भेद भ्रम ना कोई। सारा जगत जहाँ तक हमारी कल्पना पहुँच सकती है या जो कुछ भी हम जानते हैं, वो वास्तव में ब्रह्म रूप है। यहाँ पर उस प्रकार के भेद, उस प्रकार के भ्रम नहीं हैं जैसा कि हमारा निश्चय है और हमारा संसार में अनुभव होता है। तो इसीलिए हम चाहें सांसारिक तरीके से जो भी संसार की खोज के रास्ते सांसारिक लोग अपनाते हैं, किसी भी साधन से खोज कर लें, हम इस निर्णय पर कभी भी नहीं पहुंच सकते कि सब जग रूप ब्रह्म का कैसे है। इसीलिए यदि चाहे हम उसको आत्मा कह लें, चाहे हम उसको ईश्वर कह लें, चाहे उसको शब्द रूप ब्रह्म कह लें, यदि हमने इस ईश्वर की खोज के मार्ग पर चलना है तो सबसे पहले हमको किसी गुरु पर श्रद्धा लानी ही होगी, नहीं तो ये मिस्ट्री, ये रहस्य कभी भी सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो जो ब्रह्म है वही हम संसारियों के लिए नाम रूप धारण करके शरीर रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। देखने में तो वो मनुष्य जैसा ही है, उसके शरीर की गति वैसी ही होती है जैसे हमारे शरीर की गति होती है, उसका जन्म भी वैसे ही होता है जैसे हमारा होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। कहानियाँ किससे लोग कितने भी बना लें, क्योंकि इसमें वास्तविकता यही है। लेकिन गुरु की जो रहनी है और गुरु की जो करनी है, वो ये बात स्वतः ही सिद्ध करती है कि जो कुछ भी ज्ञान और जो कुछ भी जीवन हमारे सामने वो पेश कर रहा है, उस पर यदि हम गहराई से सोचें, उस पर गहन चिंतन करें, तो उनके जीवन के बारे में चिंतन और उनके ज्ञान के बारे में मनन ये खुद ही सिद्ध कर देगा कि ये ज्ञान बुद्धि का विषय ही नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान सत्पुरुष ने दिया है उस देह के द्वारा, वो बुद्धि का विषय ही नहीं है, अर्थात वो बुद्धि से नहीं दिया गया है। तो देह होते हुए भी गुरु की वाणी, गुरु के वचन और गुरु की बातें ये सिद्ध कर रही हैं कि शरीर रूप में जिसको हम ईश्वर भी कह देते हैं, जिसको हम गुरु को ब्रह्म भी कह देते हैं, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो ब्रह्म भी कह देते हैं उसको। ब्रह्मा तो फिर भी देवता में गिनती होती है उसकी, लेकिन ब्रह्म तो जहाँ केवल वही है, वो अद्वैत है। तो गुरु को ब्रह्म की उपाधि दी जाती है। इसका मतलब यदि शरीर है, शरीर तो ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ब्रह्म तो केवल वही होता है। तो गुरु की स्थिति ब्रह्म है, शरीर ब्रह्म नहीं है उसका। यदि कहीं कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, तो उसके शरीर को ब्रह्म नहीं कह रहे हैं, उसकी स्थिति को ब्रह्म कह रहे हैं। और वो जो वाणी आ रही है उस स्थिति से आ रही है, वो ब्रह्म वाणी है, अगम वाणी है, अमर वाणी है। अमर लोक से वाणी आई, सकल जीवों के ताप मिटाई। तो अमर लोक कौन सा है? वो ब्रह्म लोक ही तो अमर लोक है। तो वाणी वहीं से अवतरित हो रही है, इसीलिए जिस समय गुरु के मुख से वाणी प्रकट हो रही है, उस समय गुरु बुद्धि के वश में नहीं है, मन के वश में नहीं है, वो इससे ऊपर स्थित है, वो ब्रह्मांड में स्थित है, जिसको हम कपाल कहते हैं। ये वाणी उसी स्रोत से आ रही है। तो इसीलिए गुरुवाणी पर यदि आप ध्यान दें, मनन करें, उसको जैसा वो वाणी कह रही है उसके अर्थ तक सही पहुंचने की कोशिश करें, इसके लिए हमको सत्संग की भी आवश्यकता होती है, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है जिन्होंने गहरा मनन किया है और उस तरह का जीवन इन्होंने जिया है। वो गुरु तो नहीं बन सकते, लेकिन हर व्यक्ति एक्सपीरियंस करके कुछ तो सीख लेता है। तो मैं यदि अनएक्सपीरियंस्ड हूँ तो वो एक्सपीरियंस वाला मेरे काम आएगा, धीरे धीरे मैं भी उस ज्ञान के अनुसार जो संसार में अमल करूँगा तो मैं भी समझने लूँगा चीज़ों को, लेकिन उसमें पूरा जन्म लग जाता है। एक ही ग्रंथ समझने में पूरा जन्म लग जाएगा, फिर भी आप गारंटी नहीं कर सकते कि मैं पूरा समझ गया, क्योंकि ग्रंथ की हर बात बुद्धि के लेवल से नहीं समझी जा सकती, ये संभव ही नहीं है। वो अंदर आत्मस्थिति या योग स्थिति जब तक बनेगी नहीं आपकी, उसका सही अर्थ आपको पता ही नहीं लगेगा, अर्थ आप कितने भी करते रह जाए, और ये अहंकार भी धारण कर लो मैं सब जानता हूँ, वो संभव ही नहीं। तो इसीलिए ये वाणी पर मनन करना जरूरी है। माँ जी खुद भगत जी से कह रहे हैं, बनारसी जिस समय ये वाणी आती है इनको नहीं पता होता क्या आ रहा है क्यों आ रहा है, जब तुम पढ़ के सुनाते हो तब उनको खुद अचंभा होता है, उस प्रभु ने कैसी कृपा की। तो वो वाणी किसके लिए आ रही है, गुरु के लिए आ रही है क्या? वो वाणी हमारे लिए आ रही है, हम अज्ञानियों के लिए अंधकार में जो मन बुद्धि लिए बैठे हुए हैं उनके लिए वाणी आ रही है। तो वाणी का मतलब क्या आने का, कि मैंने जीवन जीने का जो तरीका अपना रखा है वो तरीका डुबोने वाला है, जो हमारा प्राकृतिक जीवन है, जो हम प्रकृति को देख के जीवन बनाते हैं, तो वो पांच विकार से युक्त जीवन है। प्राकृतिक जीवन आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सारे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो पांच विकार के अंतर्गत ही आएगा। तो इसीलिए इस संसारी जीवन का कंपैरेटिवली तो हम कह सकते हैं मैं इससे बड़ा अच्छा इंसान हूं, इन सबसे ऊंचा हूं मैं, लेकिन हूं मैं विकारी का विकारी। इसलिए गुरु के आगे तो ऊंचे से ऊंचे सांसारिक व्यक्ति को भी समर्पण करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो विकारी है, गुरु निर्विकारी है। मैं देह के अहम में जी रहा हूं, वो अहंकार से मुक्त है, वो कर्तापन से भी मुक्त है, उसके अंदर एक फ्लैश भी नहीं आता कि मैं करता हूं, मेरे अंदर हर समय ये बना रहता है मैं करता हूं, इसलिए गुण दोष भी मुझको दिखाई पड़ते हैं, मैं तुलना ही करता रहता हूं, मैं लोगों से अच्छा हूं। तो उस गुरु पर यदि आपकी दृष्टि नहीं है, वो गुरु आपका आदर्श पुरुष नहीं है, जिसने शास्त्रों की रचना की है, जिसने जो है वाणी को प्रकट किया है, जिसने मंत्र को प्रकट किया है, उस गुरु पर यदि आपकी पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो आप इस मार्ग पर सही प्रकार से चलोगे कैसे? दुनिया तो सारी ईश्वर की तरफ चलती नजर आती है, सारे मस्जिद में जाते हैं कहते हैं हम तो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह ही सब कुछ है, जो चर्च जाते हैं वो कहते हैं कि पिता ही सब कुछ है, परम पिता, उनके लिए ईसा ही सब कुछ है, राम को पूजने वालों के लिए राम सब कुछ है, कृष्ण को पूजने वालों के लिए कृष्ण सब कुछ है, लेकिन फिर इतने झगड़े क्यों हैं? सभी लोग उपासना कर रहे हैं फिर इतने झगड़े क्यों, फिर इतने तरह के धर्म क्यों बन गए, वैरायटी क्यों बन गई धर्मों के अंदर, इतने के पंथ संप्रदाय क्यों बन गए? तो महाजी निर्णय कह रहे हैं प्रेमी ये सब ठीक है, वो किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन ये ऐसे ही समझो जैसे पहले कोई पढ़ाई करना शुरू करना चाहता है तो सबसे पहली क्लास में उसका एडमिशन दे दिया जाता है, स्कूल में भर्ती कर दिया जाता है। तो ये सारे धर्म जो बाहरी रूप में नजर आ रहे हैं ये केवल स्कूल में एडमिशन लेना है बस, लेकिन विद्या कौन सी सीखेगा? यदि सही स्कूल में एडमिशन लिया है तो सही स्कूल वही कहलाएगा जहां जिसकी विद्या से मैं कभी पछताऊं ना पढ़ के। तो जो विद्या आपको एक ईश्वर दिखाए और एक ईश्वर की तरफ ले जाए, जिसको हम चाहे आत्मा कह लें, जिसको ब्रह्म कह लें, नाम से कोई भी दे लें उसको, तो वही स्कूल श्रेष्ठ है। तो इसीलिए जो पूर्ण गुरु है उसके विद्यालय में यदि एडमिशन लोगे, उसके अधीन यदि रहकर शिक्षा ग्रहण करोगे अध्यात्म की, तो आप ईश्वर तक पहुंचा देगा वो आपको, क्योंकि वो ईश्वर ही है, देह से ईश्वर नहीं है। मां जी तो साफ कर रहे हैं, प्रेमी ये खल्लड़ गुरु नहीं है, इसको इस लकड़ियों को दबा के तुझे क्या मिलेगा। अंतर साधना जब करेगा, अंदर कुछ प्राप्ति होगी, तब तू समझेगा कि गुरु को मैंने समझा क्या था, गुरु निकला क्या। इसलिए गुरु तो अंतर्यामी है, और वो यही नहीं कहता मैं अंतर्यामी हूं, हमको भी ये सिखाता है तू भी अंतर्यामी है, तू जीव है, तू ऐसा जीव है जो अपने ही मन के बंधन में है। और मन के बारे में हम सब जानते हैं, मन बाहर नहीं है, मन अंदर है। इसमें कोई वहम है किसी को? किसी व्यक्ति से पूछ लो, कुछ नहीं पढ़ा उसने, अध्यात्म विद्या पढ़ी ही नहीं है, उससे पूछो मन बाहर होता है या अंदर होता है, तो सोच कर बताएगा होता तो अंदर ही है। तो जिस मन के बंधन में मैं हूं वो अंदर है। जिस वासना की बात महाराज जी करते हैं वो अंदर है। जिस कर्तापन की बात महाराज जी करते हैं वो अंदर है। तो सारे दोष मेरे अंदर हैं, और मन जिसके बंधन में रहकर मैं सारा व्यवहार संसार का करता हूं, चीजें पसंद करता हूं नापसंद करता हूं, मित्र बनाता हूं दुश्मन बनाता हूं, वो मन अंदर है। तो सारा संसार तो तेरा अंदर है, तू संसार में जो भी जीवन जीता है तू देह के लिए नहीं जीता, ये तेरा वहम है, तू मन के लिए जीता है। मन से कोई पसंद होगी उसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो संसार का के बारे में हर विचार तेरे मन में उत्पन्न होता है, वो उस विचार का तेरे जीवन में महत्व है, उसी के लिए तू जीता है। तेरे मन में ये दुश्मन तैयार हो जाए, दुश्मन को मार देगा तू? वो दुश्मन आंखों ने तैयार किया या मन ने तैयार किया? तो जितना भी मेरा जीवन है वो देह के अंदर का जीवन है, लेकिन मैं बाहर का जीवन देखता हूं संसार का, क्योंकि मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं। मैं डिग्री नहीं, बड़ी बड़ी ले ली मैंने, पीएचडी कर ली, डबल एमए कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन अंदर का रास्ता किसी ने दिखाया, किसी कॉलेज ने किसी यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं मुझे। तू खुद भी अंदर है, और जिसका बंधन है वो भी अंदर ही है, और जिसके कारण बेचैनी है वो भी अंदर ही है, सब कुछ तो अंदर है। आप सिमरन करके देख लो, महामंत्र का जाप करके मौन होके देख लो, आप मन आपको उठा के फेंक देगा। जो नया नया सिमरन करने वाला है वो तो ऐसा घबराता है पहली बार कि साहब आंख बंद करता हूं मुझे चक्कर आते हैं। जिसका ज्यादा बिगड़ा मन है उसकी ये दुर्दशा होती है, और वास्तव में उठा के फेंक देता है। फेंकने का मतलब है सिमरन बीच में छोड़ के खड़ा होके टहलने लग जाता है वो। तो गुरु के अंडर में जब हम जाते हैं, अंडर में जाने का मतलब है किसी पूर्ण गुरु पर जो हमारी श्रद्धा आती है, फिजिकली उससे भेंट हो चाहे ना हो वो सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि गुरु से भेंट होना ये तो शायद लाखों में से किसी एक व्यक्ति का भाग होता है, लाखों में से किसी एक का जिसकी गुरु से भेंट हो जाए। ज्यादातर तो लोग गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर आगे बढ़ते हैं, चाहे गुरु नानक देव हुए, चाहे रामकृष्ण परमहंस हुए, चाहे महर्षि रमण हुए, चाहे महात्मा मंगतराम जी हुए, उनके सामने कितने शिष्य थे, गुरु नानक के कितने शिष्य थे, महर्षि रमण के कितने शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के कितने शिष्य थे, आज जाकर देख लो कलकत्ता लाखों लोग आते हैं वहां पर, उनके संस्थान लाखों की संख्या में। तो राम कृष्ण के इतने शिष्य थे जो उंगलियों पर गिन सकते हो। तो इसका मतलब क्या रामकृष्ण केवल उन्हीं 10 लोगों के लिए आए थे, 20 लोगों के लिए आए थे? महाजी क्या वो 800-900 लोगों के लिए आए थे? महाजी तो खुद कह रहे हैं प्रेमी, ये समता की तालीम कुर्रा हवाई में फैल गई। इसका मतलब जब गुरु को जगत गुरु कहा जाता है तो ऐसे ही थोड़ा कहा जाता है, मुझे समझ नहीं है। हर गुरु जगत गुरु ही है, हर गुरु जगत गुरु ही है, किसी भी काल में हुआ हो और चाहे वो आगे आने वाले किसी भी काल में हो, वो जगत गुरु ही होता है। और जगत गुरु क्यों होता है? वो इसलिए होता है जिसको महर्षि रमण समझा रहे हैं आपको। उनके सामने उनका एक शिष्य बैठे हुआ था, जब पूछ रहा था उनसे, महर्षि एक गुरु आप बैठे हुए हैं, एक गुरु उत्तर भारत में बैठा हुआ है, तो क्या उस गुरु पर भी श्रद्धा लाना ठीक है? महर्षि रमण उसके मन की हालत पढ़ रहे हैं, ये क्या समझ रहा है गुरु को, क्योंकि ये यहां बैठा है वहां बैठा है, इसका मतलब वो तो देह समझ रहा है उसको। अब महर्षि रमण उसको बता रहे हैं गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। अरे जब गुरु परमेश्वर है तो जगत गुरु हुआ नहीं हुआ वो? और आजकल के मॉडर्न गुरु उनको जगत गुरु टाइटल दिया जाता है, जगत गुरु टाइटल नहीं है, गुरु का ना नाम होता है ना रूप होता है। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो नाम रूप धारण कर लेते हैं, उसका रख भी लेते हैं, ना गुरु का कोई नाम होता है ना उसका कोई रूप है। गुरु चेतन सत्ता का नाम है। जब महाजी ये बात कह रहे हैं कि सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उघाड़, इसका मतलब क्या हुआ? सतगुरु तेरे अंदर ही स्थित है, इसलिए हर पल तुझको देख रहा है, हर पल। तो छोटी सी भी गलती करता है तो उसको तो पता है, तू छुपाएगा किससे, बहाने किसके आगे बनाएगा? तो इसीलिए गुरु धारण वही करता है जो अंतर्यामी ईश्वर की खोज करना चाहता है। और अंतर्यामी ईश्वर की खोज क्यों करना चाहता है? क्योंकि बाहर का जो कुछ भी है ये मन को बेचैन करने वाला है। सारा का सारा संसार, महाजी कहते हैं, ये वासना का सागर है, इसलिए इसका नाम है भव सागर। तो सारा संसार ये भव सागर है, मनुष्य के लिए इसने मुसीबतें ही पैदा करनी है, इसीलिए इस भव सागर से उद्धार का रास्ता कहां है? अंदर है। अब बताइए अंदर कौन सा चोटी वाला धर्म धारण करोगे, कौन सा जनेऊ वाला धर्म धारण करोगे? विचार करके देखो जरा। चाहे धर्म संसार में कोई भी प्रचलित हो, चाहे बौद्ध धर्म प्रचलित हो, चाहे जैन धर्म प्रचलित हो, उनके ऋषियों को देख लो, तो उनकी तो एक ही जैसी स्थिति है, जो हर ऋषि की होती है वो उनकी भी स्थिति है। और उनकी साधना भी देख लो, वो सब अंतर साधना की बात कर रहे हैं, लेकिन ये धर्म प्रचलित हैं, ये शारीरिक धर्म बन गए। इसका मतलब जो ये संस्थाएं कह लो या जो सो कॉल्ड धर्म कह लो, संप्रदाय कह लो, कुछ भी कह लो, सब अंधेरे में, किसी को होश ही नहीं। अपने ही गुरु को, अपने ही ऋषि को, जिसके आधार पर उन्होंने वो धर्म बना लिए स्पेशल, उसकी शिक्षा पे ध्यान ही नहीं। इसीलिए पूर्ण गुरु की बात पर हमने ध्यान देना चाहिए, जहां भी हमारी श्रद्धा है। भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज का प्रेमी सारे जगत को संगत समतावाद जाने, गुरु का दृष्टिकोण देखो। हम लोग हर मामले में भेदभाव करते हैं, मेरी संगत बहुत अच्छी है, उसकी बड़ी खराब है। अरे तुझसे किसने कहा था कि संगत की तुलना करना, तो तूने अपना रास्ता तय करना था या संगतें देखनी थी तूने? गुरु तो संगत का नाम भी रखने को तैयार नहीं था। महाजन कह रहा प्रेमी नाम रखते ही सीमा में आ जाती है, लिमिटेड हो जाती है। गुरु असीमित है, उसकी शिक्षा असीमित है, ब्रह्म शिक्षा है उसकी, नाम रखते ही वो सीमित हो जाएगी, लेकिन प्रेमी कहां मानने वाले थे? तो महाजन का प्रेमी नाम रखना ही चाहते हो वो भी आ जाएगा, आ गया वो नाम, तो वो भी रख दिया गया। तो हमने गुरु के दृष्टिकोण को पकड़ना है। तो गुरु क्या था, कैसे उसने वो अवस्था प्राप्त की थी, और क्या हमको उस अवस्था की प्राप्ति के लिए शिक्षा दे रहा है वो? तो गुरु ने हमारे वास्ते इस मार्ग में चलने के लिए पांच नियम दिए या नहीं दिए? और ये पांच नियम के बारे में समता व्यास में क्या लिखा हुआ है? आत्मिक उन्नति के साधन है। तो आत्मा की उन्नति होती है क्या? आत्मा तो उन्नत है ही। आत्मिक उन्नति का मतलब क्या? मैं आत्मा की ओर कैसे अग्रसर हो सकता हूं, ये आत्मिक उन्नति है। और अग्रसर हो गए कब? जब पहले मन के अंदर सोच आएगी इसके बारे में। अभी तो विचार आएगा ना, पहले तो अभी तो विचार मेरा संसार के बारे में है, संसार सर्वश्रेष्ठ है, इसमें उन्नति करनी चाहिए। लेकिन गुरु सिखा रहा है को ये संसार माया रूप है, माया महा ठगनी हम जानी, कबीरदास जी कह रहे हैं। ये तो जिंदगी ठगी जाती है इस माया में फंस गया तो इसलिए माया में तो भेदभाव है, ऊंच नीच है, किस किस को तू किस किसकी आलोचना करेगा, किस किस से अपनी तुलना करता रहेगा? तो बाहर का देखने का रास्ता नहीं, यदि पूर्ण गुरु धारण किया है तो अंदर देखना शुरू कर। बाहर तू अपना संबंध केवल सेवा तक सीमित रख, बस, वो भी निष्काम, कि मैं करने वाला नहीं हूं प्रभु, इस देह का प्रारब्ध है इसलिए देह सेवा कर रही है ये, क्योंकि यदि तेरे प्रारब्ध में तू सेवा कर ही नहीं सकता। महर्षि रमण साफ कह रहे हैं जिस कार्य को करने के लिए ये देह पैदा हुई है वो सारे कर्म इस देह को करने होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जो देह मैं बना घूम रहा हूं, मैं देह हूं, तो इसीलिए मैं कहता रहता हूं मैंने किया मैंने किया। तो गुरु तो पहले ही सिखा रहा है तू देह है ही नहीं, तू तो जीव है, तू तो जानने वाली सत्ता है, नोइंग फैकल्टी है। तू जानता है मेरी देह में ये हो गया, तू जानता है मेरे मन में ये विचार चल रहा है, तू तो देह से भी ऊपर है, मन से भी ऊपर है, तू जानने वाला है। और जो वस्तु तू जान रहा है वो सब माया है, और आगे भी जहां तक जानता रहेगा तू इस बुद्धि से, वो सब माया ही होगी। और ईश्वर आत्मा माया से ऊपर है, मायापति है। इसका मतलब वहां तो तेरा ना कभी मन पहुंचेगा, ना तेरी कभी बुद्धि पहुंचेगी। इसलिए महर्षि रमण कहते हैं ये रास्ता समर्पण का है या फिर ज्ञान का है। उस ज्ञान योग को तो हमारे पास बुद्धि ही नहीं उतनी, उसके काबिल ही नहीं हम, तो वो तो कभी कोई ज्ञान योगी पकड़ेगा तो देखा जाएगा। लेकिन समर्पण के लिए सब चल सकते हैं, जिसको महाजी कह रहे हैं गुरु परायणता, कि गुरु ही सब कुछ है मेरे लिए, इसीलिए हर मामले में मैंने गुरु को ही देखना है। तो पांच नियम भी मैंने कैसे पालन करने हैं, ये साधारण बुद्धि से पांच नियम समझ में नहीं आते हैं। इन पांच नियम की गहराई समझने में भी शायद आपको पूरा जन्म लग जाए, क्योंकि ये जीवन जब गुरु के अनुसार जीता है इंसान, तब ये सत्विचार भी समझ में आते हैं। फिर बिना चले ये समझ में नहीं आते, ये ऊपर पर से कितना सत्संग करते रहो या सुनते रहो, चलने वाले को ही समझ में आते हैं। इसीलिए जिसके अंदर गुरु प्रायणता वास्तव में है, जिसने गुरु को सही समझा है, सही तरीके से समझा है, वो जब अंतर साधना में उतरता है तब गुरु कृपा से ही सारे भेद खुलते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो इसीलिए अहंकार करके तो मैं शास्त्र के अर्थ भी नहीं समझ सकता, अर्थ कर तो सकता हूं मैं लेकिन समझ नहीं सकता। जो उसका वास्तव में अर्थ है, हो सकता है 20 साल बाद खुले आपकी बुद्धि के आगे, हो सकता है 50 साल बाद खुले। वो अंतर साधना के बिना शास का भेद इस जीव को पता नहीं लगता। इसलिए महाजी कह रहे हैं समतालाश में कई जगह उन्होंने लिखा है बात करें, सत विचार पर गहरा चिंतन करना चाहिए। जो सतपुरुष की कलम से लिखा गया है या सतपुरुष के मुंह से उच्चारण हुआ है वो सत विचार है। क्यों सत विचार है? गुरु सत रूप है, ब्रह्म रूप है। सत कहते हैं सत्ता को, जो चीज संसार में सृष्टि में एग्जिस्ट कर रही है वास्तव में, जिसकी सत्ता है उसको सत्य कहते हैं। तो उसके द्वारा जो विचार प्रकट हुआ है वो सत विचार है। तो उस सत विचार पे मैंने गहरा चिंतन करना है, क्योंकि संसार के विचारों से ऊपर है वो, समझ में ही नहीं आएगा साधारण रूप में। तो इसीलिए आत्मा की खोज अंदर होनी है। गुरु आत्म रूप है, तो इसीलिए गुरु जो वचन भी कह रहा है, गुरु की वाणी जो प्रकट हो रही है, गुरु का जो शास्त्र प्रकट हो रहा है, उस पर मैंने जिंदगी भर गहरा विचार करना ही करना है। मैं कितना भी बड़ा सत्संगी क्यों ना हो, विचार करने वाला क्यों ना हो, लेकिन मुझको अंदर ये हमेशा भाव बना रहना चाहिए, मैं इनकम्प्लीट हूं, अज्ञानी हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से, गुरु से, कि गुरु मेरी बुद्धि तो सीमित है और विचार ही की विचार का जो गहराई है वो असीमित है, तो आप ही समझाओ। प्रार्थना करके मैं उसको अपनी बुद्धि का समर्पण पहले करता हूं, मैं तो अज्ञानी ही हूं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मोटी मोटी बातें समझ में आती है, जैसे 10% दान करना चाहिए, अरे मोटी सी बात है ये, क्या गहरा विचार करोगे? गहरा विचार तो हो है, उसमें भी एक गहरा विचार है, लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां तो बड़ी सीधी सी बात है, 10% ईमानदारी से कमाओ, 10% उसका जो है दीन दुखियों की सेवा में लगा दो, और पीछे ये भाव रखकर कि प्रभु ये आपकी ही चीज है, आपके ही हवाले, क्योंकि प्रभु के अलावा है कुछ नहीं। कोई दुखी जीव आपके सामने आएगा वो प्रभु का भेजा हुआ ही आएगा। तो प्रभु की चीज प्रभु के हवाले, उस भाव से, क्योंकि वास्तव में महाजी साफ कह रहे हैं कि जीव करता नहीं है, और ये कर्तापन ही तो बंधन है। तो इसका मतलब ये कर्तापन तेरा खत्म करने का रास्ता बाहर का क्या है? बाहर का ये है, प्रभु तू करता तू हरता सब तेरी आज्ञा। तो आप दान कर रहे हो तब भी प्रभु याद आ रहे हैं, प्रभु की करनी याद आ रही है। आप सिमरन कर रहे हो तब भी प्रभु याद आ रहे हैं, आप उसके सद्विचार पढ़ रहे हो तब भी प्रभु याद आ रहे हैं, और संसार में कमाई करके परिवार चला रहे हो तो वहां भी सतपुरुष गाइड कर रहे हैं आपको। प्रेमी समय सीमा बांध के तूने परमार्थ भी करना है और स्वार्थ भी करना है। तो हर मामले में कमाई करते वक्त भी याद है कि मैंने 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना पैसा कमाने का, मुझे 3 घंटे सिमरन में भी लगाने हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी जिंदगी का सिमरन है, नंबर एक पे है वो। सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है, संत विलास ने साफ लिखा हुआ है। जब गुरु जिसको मैंने बनाया है वो लिखकर दे रहा है कि सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है, तो मेरे पैसे की कमाई नंबर एक पे कैसे आ गई? तो मैं कहां गुरु की बात मानने को तैयार हूं? यदि मेरे पैसे की कमाई नंबर एक पर आ गई, इसका मतलब मैंने तो गुरु बनाया ही नहीं, अपना गुरु खुद ही हूं मैं, तो तेरा आगे का रास्ता कैसे खुलेगा फिर? तो आत्मा ही खोज कैसे करेगा? जब गुरु की पहली ABCD जो बात है, जो मोटी सी बात है मैं कह रहा हूं, तो मोटी सी बात है ना। अरे ये बात क्या समझ रही है? बहुत लंबी चौड़ी बुद्धि चाहिए। सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है, जब गुरु लिखकर दे रहा है आपको, तो आपकी ईश्वर उपासना नंबर आखिरी, मतलब कि लिस्ट में आखिरी कैसे हो गई? कि सब कामों से फुर्सत मिलेगी तब सिमरन करूंगा, जो हमारा जो है वो मेथड बना हुआ है सिमरन करने का। तो ऐसा सिमरन तुझे कहां ले जाएगा? तो 20 साल तक सिमरन करता रहेगा, संसारी का संसारी बना रहेगा, तेरी बुद्धि खुलेगी और सत्संग भी करता रहेगा सारी जिंदगी भर, सुनाता भी रहेगा सत्संग लोगों को, लेकिन तेरे मन की क्या हालत है, मन कहां खड़ा हुआ है तुझे पता ही नहीं। तो इसीलिए यदि आत्मा की खोज करनी है तो आत्मरूप गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार तुझको अध्यात्म का रास्ता तय करना ही होगा, और गुरु रूप ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार तुझको संसार में स्वार्थ कर्म भी करने ही होंगे, क्योंकि देह है तो देह का पालन तो करना ही पड़ेगा। यदि परिवार है, प्रारब्धवश मिला है परिवार, तो उसका भी पालन करना ही पड़ेगा। कहीं शास्त्र में यह तो नहीं लिखा कि परिवार को जंगल में छोड़ के चले जाना? तुम जो कर्तव्य प्रभु ने मेरे को दिए हैं, जो मेरा प्रारब्ध है, वो सारे मैंने करने, लेकिन उसको करते हुए मैंने उनसे उपरस हो जाना है, उनसे मुक्त हो जाना है। तो शरीर से मुक्त नहीं होऊंगा मैं, मेरा जो अंदर मन है जिसमें विचार चलते हैं, मैं देखूंगा कि मन मेरा खुद गुरु प्राण हो गया, और ऐसे भी कोई कोई लोग आपको समाज में दिखाई पड़ेंगे जिनका सिमरन में अंदर बहुत मन लगता है, देखो जीवन से भी आपको पता लग जाएगा उनके अंदर बड़ा सेवा भाव है, स्वार्थ उनके जीवन में आपको पता नहीं लगता, स्वार्थ तो सब हर व्यक्ति अंदर होगा ही होगा, लेकिन बेयर मिनिमम होता है उनके अंदर, भक्तों के अंदर स्वार्थ बेयर मिनिमम होता है। तो ऐसे भक्तों के यदि मन की तलाश करोगे तो प्रभु नाम के अलावा, प्रभु प्रेम के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता उनको, काम सब करते हैं, ऊपर ही ऊपर करते हैं, लेकिन मन उनका प्रभु में रहता है। तो उनकी पहचान क्या है? पहचान उनकी एक ही है, उनके अंदर विवेक बड़ा स्ट्रांग होता है और वैराग्य बड़ा स्ट्रांग होता है। वैराग्य का मतलब है संसार में किसी वस्तु से अटैचमेंट है ही नहीं उनको, किसी वस्तु से लगाव नहीं है उनको, कर्तव्य पालन सबके प्रति कर रहे हैं, बीवी है तो बीवी का भी ख्याल रख रहे हैं, बच्चे तो बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं, समाज तो समाज का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन लगन मन में किसी के प्रति नहीं है, अटैचमेंट किसी के प्रति नहीं है, अटैचमेंट केवल ईश्वर के प्रति है। तो ये विवेक के कारण होता है, इसलिए विवेक और वैराग्य संग रहते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी की बुराई कैसे देखेगा बताओ मुझे? उसके लिए किसी की बुराई देखना संभव है? इसका मतलब ये नहीं है उसकी बुराई, उसको किसी की बुराई का कभी किसी कमी का पता नहीं होता, पता तो होता है लेकिन उधर ध्यान नहीं आता उसका, उसका ध्यान एक ही रहता है कि जो प्रभु मेरे अंदर है वो इसके अंदर भी तो है, जो प्रभु मेरी देह को चला रहे हैं इसकी देह को भी तो चला रहे हैं। जब मेरे लिए वाणी कह रही है कि रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतरयामी, वो राम नाम भज रहा हूं मैं, लेकिन वो नाम रूप, वो शब्द रूप परमेश्वर मेरे रोम रोम में पहले से बसा हुआ है, तो इसके रोम रोम में भी तो प्रभु बसे हुए हैं, जिसको महाजी कहते थे नाद रूप परमेश्वर, तो रोम रोम में से वो नाद प्रकट हो रहा है, तो मैं किससे नफरत करूं, किसकी बुराई देखूं? तो भक्त को तो राम नजर आते हैं उसके अंदर, वो कैसे उसकी आलोचना करेगा, कैसे उसकी बुराई दिखेगा, कैसे दुश्मनी करेगा उससे, कैसे किसी से ईर्ष्या द्वेष करेगा, हो ही सकता उसने का? ये तो भक्तों की पहचान है, इसलिए भक्तों का जीवन भी प्रेम रूप ही होता है, दया रूप ही होता है, वो सेवा रूप ही होता है। उनको फुर्सत कहां है संसारी चीजों को याद करने की? वो तो अंदर राम में रमे होते हैं, संसार के काम कर भी रहे हैं तब भी अंदर राम में रमे हुए हैं। तो इसीलिए जो पूर्ण गुरु से मैंने साधना सीखी, साधना सीखने का मतलब है जिसकी परमिशन उसने मुझको दी है प्रभु को याद करने के लिए, प्रभु तक पहुंचने के लिए, मैंने उसी अंतर साधना को अपनाना होता है, क्योंकि वो जो साधना है मंत्र रूप में, वो गुरु की ग्रेस है, वो गुरु कृपा है। उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता, उसके आगे मेरा समर्पण चाहिए। कि बुद्धि से ईश्वर नहीं मिलता है, समर्पण से ईश्वर मिलता है। महर्षि रमण कह रहे हैं ये रास्ता समर्पण का है, और मैंने उसके लिए लोकमत तैयार कर लिया। अरे भाई 1,00,000 लोग कह रहे हैं सही ही बात है, ये 1,00,000 तुझको नाले में ले जाएंगे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, लेकिन एक भी भक्त कह रहा है वो ठीक बात है। वो समर्पण वाला एक भक्त भी कह रहा है उसकी बात ठीक है, वो पहुंचेगा वहां तक। तो इसलिए हर मामले में मैं बारीकी से गुरु को मैंने देखना होता है, गुरु क्या कह रहा है, किस चीज की परमिशन दे रहा है। मैंने लोकमत नहीं देखना होता है, संख्या नहीं देखनी होती कितने लोग कह रहे हैं। तो ऐसा जो समर्पण वाला जो शिष्य है वो हर मामले में गुरु की चीज देता है। महाजी ने ये नहीं कहा प्रेमी तुम हमेशा समता विलास पढ़ते रहना, वाणी पढ़ते रहना। सारे गुरु दुनिया में जितने हैं वो सब ईश्वर ही तो हैं, इसलिए उनकी ओरिजिनल बातें यदि अवेलेबल कहीं पर भी हैं पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, आका मार्गदर्शन करेंगे। पूर्ण गुरु की बात आका जरूर मार्गदर्शन करेगी, लेकिन कहीं दुविधा हो जाए तो फिर जिस गुरु पर आपने श्रद्धा की है ना वहीं पर आ जाओ लौट कर, यदि कहीं दुविधा हो जाए तो वहीं से क्लैरिटी लो फिर। क्योंकि अभी तो हम नाम रूप में खड़े हुए ना, तो इसीलिए नाम रूपधारी गुरु भी होता है हमारा। लोक व्यवहार में तो नाम रूपधारी ही होगा वो, तो उसके जिसके प्रति समर्पण किया है उसकी बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बात उसकी इनकम्प्लीट नहीं होगी, हमारी समझ में ठीक नहीं आ रही है। तो अन्य गुरु भी जो हुए हैं संसार में उनकी बात आपको उस बात को समझने में सहायता कर सकती है। मैंने जाने कितनी बातें थी शुरू शुरू में समतावास में समझ में नहीं आती थी, लेकिन महर्षि रमण की रामविज परमहंस की और गीता से बहुत सी चीज़ें पढ़ी, उपनिषद से बहुत सी चीज़ें पढ़ी, समतावास की बातें वो समझ में आने लगी। तो उपनिषद ने भी समतावास को समझने में सहायता की थी, गीता ने भी मुझको समतावास समझने में सहायता करी, महर्षि रमण ने भी सहायता करी, रामविज परमहंस ने भी सहायता करी। इसीलिए यदि आत्मा की खोज करनी है तो आत्मरूप गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। और हमारे पास तो एक ऐसा मतलब कि सौभाग्य है कि हमको ऐसा गुरु मिला है, ऐसे गुरु पर हमारी श्रद्धा है जिसके द्वारा वाणी प्रकट हुई है, जिसके द्वारा समता विलास शास्त्र प्रकट हुआ है। ऐसा सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। यदि कहा जाए हजारों वर्ष में कोई एक ही होता है ऐसा गुरु, तो ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये गुरु की शेषता बताने की बात नहीं की जा रही है, ये ऐसे गुरु सृष्टि में या प्रकृति में ये दुर्लभ गुरु होते हैं जिनके द्वारा शास्त्र की भी रचना हुई है। और ऐसा गुरु हमको मिला, ऐसे शास्त्र हमको मिले, फिर भी हम जो है वो अज्ञानी बने रहे, इससे बड़ा निकम्मापन हमारा क्या होगा। हमें तो पुरुषार्थ करना चाहिए और गहरा पुरुषार्थ करना चाहिए, माया को समेटना चाहिए, जो बढ़ा ली अब हर एंगल से समेटो उसको। और जो कीमती वक्त मानव जन्म का है इसमें 4 चांद लगाओ, इसमें 4 चांद जो है गुरु भक्ति से ईश्वर भक्ति से लगते हैं। तो पूर्ण गुरु ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, उस आत्मरूप गुरु ने जो हमारे सामने प्रैक्टिकल जीवन पेश किया है, आंखों से भले ही ना दिखाओ लेकिन ओरिजिनल उनके जीवन के बारे में आज मेरे गुरुदेव में या जीवन गाथा में या जो भी लिटरेचर हमारे पास है उसमें चीजें उपलब्ध हैं, अभी मिलावट नहीं हुई है उसके अंदर। आगे आने वाले समय में मिलावटें होंगी, दुनिया की कोई पुस्तक बची ही नहीं जिसमें मिलावट ना हुई, उसमें भी मिलावट होगी, लेकिन अभी तो प्योर चीज हमको उपलब्ध है। तो ईश्वर प्राप्ति का यदि शौक है, उसकी जरूरत समझते हैं, जो कि समझना चाहिए, क्योंकि मन संसारी है, याद रखो मन संसारी है। और संसार में पांच विकार हैं, पांच विकार का सागर है संसार। तो इसीलिए मन को मैंने आत्मा की ओर मोड़ना है, आत्मरूप गुरु है। तो इसीलिए मन को यदि मैंने ट्रेनिंग देनी है अपने, तो मैंने समता विलास के अनुसार हर बारे में सोचना है और गहराई से देखना है कि मेरा क्या मार्गदर्शन समता विलास कर रही है। तो आप देखोगे कि आपकी गलतियां बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाएंगी। और जब लगातार चिंतन मनन करने की आदत है, लगातार सद्विचार सुनने की आदत है, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अपनी गलतियों का एहसास ना हो। नहीं भी कभी पता लगता है तो किसी से पूछ सकते हो। इस दुनिया में जब ईश्वर है तो ईश्वर का मार्ग बताने वाले लोग भी हैं, याद रखो। संख्या भले ही कम हो उनकी, लेकिन धरती कभी खाली नहीं रहती, महाजी कहते थे। इसलिए मेरे अंदर यदि इच्छा है तो मैं अपना गाइड भी तलाश कर लूँगा, अपना साथी भी तलाश कर लूँगा और ईश्वर तक मैं पहुँच सकता हूँ। ईश्वर आपको खाली नहीं रखता। तो अंदर का रास्ता आपको यदि पता भी नहीं लगता, लेकिन मेहनत आपकी पूरी है तो गुरु अंतर्यामी याद रखो, जरूरत पड़ी तो बोल के भी आपको बता देगा तू ये कर, जरूरत पड़ी तो किसी के ऐसे व्यक्ति के पास खुद पहुंचा देगा तुझको, वो तुझको सपने में आके बता जाएगा कि इसके पास जाते। इसलिए यदि हमारी श्रद्धा में कमी है तब फिर जीवन में कमी रहती है। श्रद्धा यदि पूरी है और समर्पण है और यदि साथ में पुरुषार्थ है गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, तो ये आत्मा की खोज अंदर हो ही जाती है। इसलिए जन्म एक लगे, दो लगे या तीन लगे, जन्म की गिनती नहीं है यहाँ पर। मार्ग जो हमारा हो रहा है वो ठीक तय हो रहा है, टाइम हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ देखने वाली होती है। तो इसलिए आत्मरूप गुरु के मार्गदर्शन के साथ चलें तो आत्मा की खोज अंदर ज़रूर होगी और हम उस आत्मा में स्थित एक दिन ज़रूर होंगे। ये फाइनल बात है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।